जय राधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय जन रंजन जय यशोदन जय रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मध्यस्थ डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरियस टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू सिमरन डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता तथा रूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 54, पृष्ठ संख्या 393। आज क्या बात है, किताबें बहुत कम है, हैं? कितनी है टोटल, टेबल कितनी है, हैं? 12 होना चाहिए। किताबें भी कम है ना, सबने निकाल लिया पेज नंबर 393। 393 निकाली सब लोग, उनको नहीं मिला अभी तक, मिल गया पीछे पीछे, बहुत देर लग रही। 393 पेज, 393 मेरे पीछे बोली। भक्त्या तनन्यया शक्यं अहमेवं विदुरर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तनन्यया शक्यं अहमेवं विदुरर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तनन्यया शक्यं अहमेवं विदुरर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। बोलिए। और कोई माता जी शब्दार्थ बोलिए। भक्त्या भक्ति से तो लेकिन अनन्या सकाम कर्म तथा ज्ञान से रहित शक्यः संभव अहम मैं एवं विधा इस प्रकार अर्जुन हे अर्जुन ज्ञातुं जानने द्रष्टुं देखने च तथा तत्त्वेन वास्तव में प्रवेष्टुं प्रवेश करने च भी परंतप हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे अर्जुन केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए। सब लोग मेरे साथ बोले ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं त्रिगुरो श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाख हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे श्लोक कैसे निकाले इस श्लोक को समझेंगे भगवान कह रहे हैं भक्त्या तू अनन्या तो भगवान कहते हैं भक्त्या तू अनन्या तू का मतलब लेकिन तो पिछले श्लोक में भगवान ने चार विधियों में ना 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 शब्द का प्रयोग किया था नहीं 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 है ना किसके लिए नहीं कि मुझे कोई नहीं दर्शन कर सकता है इन चार विधियों के द्वारा मेरा कोई दर्शन नहीं कर सकता है ना वेदों के द्वारा ना तपस्या के द्वारा ना दान के द्वारा ना पूजन के द्वारा है दर्शन नहीं कर सकता नहीं 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 चारों विधियों में भगवान ने ना 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 इसका मतलब प्रयोग किया ना शब्द का प्रयोग किया लेकिन अब भगवान कह रहे हैं तू लेकिन है लेकिन किस विधि के द्वारा कोई दर्शन कर सकता है अनन्य भक्ति के द्वारा अनन्य भक्ति के द्वारा तू तो इसलिए किंतु भगवान ने कहा पिछले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी तो उससे अब दूसरी बात बोल रहे हैं किंतु इसलिए किंतु शब्द का प्रयोग करें किंतु है ना अनन्य भक्ति के द्वारा कोई देख सकता है मुझको है अहम एवं विधो अर्जुन इस प्रकार से कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम चापरंतव चार तीन बातें संभव है मुझे इस प्रकार से जाना जा सकता है मुझे देखा जा सकता है और मेरी लीलाओं में प्रवेश किया जा सकता है केवल देखने वाली बात ही नहीं है बल्कि जानना भी देखना भी और प्रवेश करना भी है ना अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं शिला प्रभुपाद की कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है इस श्लोक में भी इसे स्पष्ट प्रया कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवद गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, ये जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। अनधिकारी टीकाकार प्रभुपाल देते हैं, अनधिकारी टीकाकार गीता के टीकाकार। गीता की टीका करने वाले बहुत से लोग हैं जिनको गीता की टीका करने का अधिकार नहीं है, इसलिए प्रभुपाद उनके बारे में कहते हैं अनधिकारी टीकाकार। गीता की टीका कर रहे हैं, उनको गीता की टीका करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको गीता का संदेश कृष्ण की शिष्य परंपरा के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ है, और फिर भी टीका करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है, तो गीता की टीका करते हैं लेकिन भक्ति को महत्व तो नहीं देते। अगर गीता की टीका कोई करे और भक्ति को महत्व ना दे है, तो उसको गीता की टीका करने का अधिकार ही नहीं है। कि गीता में तो भगवान अनन्य भक्ति की ही विधि से बता रहे हैं कि कोई उनको देख सकता है, जान सकता है या उनकी लीला में प्रवेश कर सकता है। और गीता के टीकाकार भक्ति को महत्व ना दें, उनको क्या अधिकार है गीता की टीका करने का। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कोई ये नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही दो भुजाओं वाले रूप में बदल गए। भागवतों में लिखा हुआ है कि माता देवकी से चार भुजाओं का बालक उत्पन्न हुआ। चित्रत में तो दिखाया जाता है कि इसे चार भुजाओं कि जो है भगवान बिल्कुल बड़े हैं, खड़े हैं, लेकिन वास्तव में चार भुजाओं का बालक ने जन्म लिया देवकी के गर्भ से। सोचिए, चार भुजाओं के बालक ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया है, छोटा सा बालक, चार भुजाएं, वस्त्र धारण किए, आभूषण धारण किए, आयुध शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, मुस्कुराता हुआ बालक पैदा हुआ देवकी के गर्भ से हैं, और उसके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है तो अंधकार दूर हो रहा है, कारागार का अंधकार दूर हो रहा है। एक ऐसे बालक ने जन्म लिया, चार भुजाओं का बालक है ना, तो छोटा सा बालक है जो जैसे जन्म लेता है, बालक कितना छोटा होता है, चार भुजाओं का बालक है, उसी के हिसाब से छोटे छोटे चक्र गदा शंख कमल उसी के हिसाब से छोटे, और वही छोटा बालक जो है देवकी और वसुदेव से बातें कर रहा, माता पिता से बातें कर रहा है कि मैं तीसरी बार आपका पुत्र बना हूं, आपने मुझे प्रसन्न किया था तपस्या के द्वारा, तो तीन जन्मों में आप मेरे माता पिता हैं, ये तीसरा जन्म है कि आप मेरे माता पिता बने हैं, और फिर वही चार भुजाओं का बालक क्या हो गया, नग्न दो भुजाओं का बालक बन गया, है ना। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि कोई इन बातों को समझ नहीं सकता है। आगे, ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं ना दार्शनिक चिंतन द्वारा, अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। उसी को कहा प्रवेश तुम चाह, कि प्रवेश नहीं कर सकता इन बातों में, कृष्ण के रहस्य में जो है कोई प्रवेश नहीं कर सकता है ना, यानी रहस्य को नहीं जान सकता। आगे, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं।
इसके लिए अनेक विधि विधान है, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए, वे नियमों का के अनुसार तपस्या कर सकता है। तपस्या, अब पिछले श्लोक में भगवान ने तपस्या के लिए मना किया था कि तपस्या के द्वारा कोई मेरा दर्शन नहीं कर सकता है, हैं? लेकिन अब प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो अनुभवी जानकार हैं वैदिक साहित्य के, वो जान सकते हैं भगवान को। पिछले श्लोक में भगवान ने मना किया था कि वेदों के द्वारा कोई नहीं जान सकता, लेकिन प्रभुपाद अब बताते हैं अनुभवी वैदिक साहित्य के जानकार कृष्ण को जान सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भक्ति का योग होता है तो व्यक्ति वेदों के अध्ययन से कृष्ण को जान सकता है। उसी प्रकार तपस्या में भी भक्ति का योग हो तो इन नियमों के अनुसार, प्रभुपाद लिखते हैं, इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। तो ये क्या है, ये भक्ति में तपस्या हो गई। भक्ति में ही जब कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन करे तो कृष्ण को समझ सकता है, जबकि वेदों के अध्ययन से कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं समझ सकता है, अगर भक्ति रहित वेदों का अध्ययन हो। और भक्ति में अगर वेदों का अध्ययन हो तो कृष्ण को समझ सकता है। उसी प्रकार से तपस्या भी, भक्ति बिना तपस्या से कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता, लेकिन भक्ति पूर्ण तपस्या से कोई कृष्ण को समझ सकता है, है ना। तो भक्तिपूर्ण तपस्या क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उपवास करना और महीने की दो एकादशियों को उपवास करना, है ना। आगे जहाँ तक दान का संबंध है, अब पिछले श्लोक में भगवान ने दान के बाद भी कही थी कि दान के द्वारा कोई व्यक्ति कृष्ण को नहीं समझ सकता है, तो भक्ति रहित दान के द्वारा कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन आप प्रभुपाद लिखते हैं जहाँ तक दान का संबंध है, ये बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को ये दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। अब ये दान कैसा हो गया, भक्ति युक्त दान हो गया, तो कृष्ण को समझा जा सकता है, है ना। भक्ति, भक्ति रहे दान कृष्ण को नहीं समझ सकता, भक्ति सहित, तो भक्ति में दान करना मतलब उन कृष्ण भक्तों को दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। आगे कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से वितरण किया जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। तो ये बहुत बड़ा दान है, है? क्या दान, कृष्ण भावनामृत का दान करना, और चैतन्य महाप्रभु ने ये दान किया, कृष्ण प्रेम का दान किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का दान किया, और हम चैतन्य महाप्रभु का संदेश अगर देते हैं तो बहुत बड़ा दान है। तो भगवान ने दान के लिए मना किया कि दान के द्वारा कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता है, लेकिन अगर हम लोगों को कृष्ण भावनामृत का दान देते हैं, कृष्ण के संदेश का दान देते हैं, या तो धन दें कृष्ण के भक्तों को, तो ये दान भक्ति में दान हो गया, और या फिर कृष्ण के संदेश का दान दें, कृष्ण का संदेश दें। ये प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, वितरण का भी जो कार्य है ये भी कृष्ण के संदेश का दान है। आप चाहे पैसा लेते हैं ग्रंथों का, लेकिन फिर भी जो दान आपने कृष्ण के संदेश का दिया पुस्तक के रूप में, इसकी कोई, उसकी कोई कीमत नहीं है। आपने पुस्तक का पैसा ले लिया तो वो तो कागज की छपाई का पैसा लिया है, लेकिन जो संदेश उसमें लिखा है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। आप सुन रहे, तो दान तो हुआ ना, आपने किताबें जो बेची हैं, है? तो ये बहुत बड़ा दान है, जबकि आप किताबों का पैसा ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप कागज का और छपाई का पैसा ले रहे हैं, लेकिन जो पुस्तक में ज्ञान है, कृष्ण का संदेश है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो क्या किया आपने, पुस्तक बेची किसी को, तो ये क्या है, बहुत बड़ा दान है, है? और काय का दान है, कृष्ण के संदेश का दान, ये दान ही है, शुद्ध दान है ना, महादान है ना। तो भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, उन्होंने दान किया क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से वितरण किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है ना, तो ये बहुत बड़ा दान है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना बहुत बड़ा दान है, है ना। अगर आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर सकते, तो उन भक्तों को अगर आप दान देते हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हैं, इतने बड़े दान में लगे हुए हैं कि कृष्ण का संदेश दान करने हैं, तो उनको अगर आप धन दान देते हैं, तो ये भी आपका दान क्या हो गया, बहुत बड़ा दान हो गया है ना, भक्ति में दान हो गया। तो प्रभु लिखते हैं, अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया ये दान संसार का सबसे बड़ा दान है। संसार का सबसे बड़ा दान क्या दान है, अगर आपने उन भक्तों को दान दिया, धन धन दान दिया, जो क्या कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। आगे, और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, हाँ अब देखिए भगवान ने पिछले श्लोक में मना किया था कि पूजा के द्वारा भी कोई कृष्ण को नहीं देख सकता, अब प्रभुपाद लिखते हैं कि पूजा के द्वारा भी कृष्ण का दर्शन किया जा सकता है, लेकिन कैसी पूजा, भक्ति में पूजा है क्या। यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति, सामान्यतया विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो ये भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। हाँ, इसमें आप कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को नमस्कार करें, तो कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। आगे, नौ सखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है। नौ सखियों के लिए, नौ सखियों के लिए मतलब भक्ति में प्रारंभ, भक्ति को प्रारंभ करने के लिए क्या जरूरी है, मंदिर की पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेतांशुतर उपनिषद में 6:23 हुई है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसमें भगवान के लिए अभिचल भक्तिभाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अभिचल श्रद्धा होती है, वो भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मतलब गुरु के प्रति और भगवान के प्रति बराबर श्रद्धा अगर है, तो उसको शास्त्रों के अर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं, है ना, या भगवान का दर्शन वो प्रकट रूप में कर सकता है। आगे, मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, मानसिक चिंतन ये नहीं हो सकता, मानसिक चिंतन के द्वारा आप नहीं समझ सकते। लेकिन पूजा, अगर आप भक्ति में पूजा करते हैं, भक्ति में अगर आप वेदों का अध्ययन करते हैं, भक्ति में अगर आप तपस्या करते हैं, भक्ति में आप दान करते हैं, तो चारों के चारों कार्य क्या है, कृष्ण का दर्शन करा सकते हैं। आगे, जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन ना, कि परंपरा है, भगवान कृष्ण ने अपनी परंपरा दी है, तो उनसे हमें सुनना होता है, संदेश लेना होता है और मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है ना। आगे, यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से ये सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि से, कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है, कोई विधि नहीं अन्य। किसके अलावा एकमात्र विधि क्या है? भक्ति। आगे कृष्ण के चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए, क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। ये दो रूप जो है भगवान कृष्ण के क्या है? शाश्वत है, साक्षात। द्विभुज साक्षात रूप है और चतुर्भुज रूप उनका स्वांश रूप है, सुकम रूप, सुकम रूप है, स्वांश रूप है। और द्विभुज रूप क्या है? साक्षात रूप कृष्ण का, है ना। तो ये दो रूप क्या है? ये श्रेष्ठ है, विश्व रूप की तुलना में श्रेष्ठ है। रूप लिखते हैं आगे, नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। विश्व रूप नश्वर है, क्यों नश्वर है विश्व रूप? क्योंकि ये विश्व रूप में भगवान चूंकि संहार करते हैं, है ना, तो भगवान का रूप कैसा है? स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है, क्योंकि इस रूप में भगवान चूंकि भय प्रदान करते हैं, भयानक रूप है भगवान का, तो इस रूप से भक्त प्रेम नहीं कर सकते भगवान के साथ। इसलिए अगर भगवान कभी रूप दिखलाते हैं तो ये ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, क्योंकि भक्त भगवान के स्वरूप को ज्यादा समय के लिए देख नहीं सकता, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि नश्वर है, इसलिए, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सुदूरदर्शन शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे ये भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा यहाँ पर जो बात बता रहे हैं कि भगवान ने जो अपना विश्व रूप दिखलाया, ये कोई इसलिए नहीं दिखाया कि इस रूप में हमेशा अर्जुन भगवान का दर्शन करें, अर्जुन भगवान को इस रूप में हमेशा समझें, इसलिए नहीं। किसी दिखलाया कि आगे चल कर बहुत से मूर्ख होंगे जो अपने को क्या कहेंगे कि हम भी भगवान हैं, जैसे कृष्ण भगवान है वैसे मैं भी भगवान हूँ, क्या अंतर पड़ता है? कृष्ण गीता का उपदेश दिया, मैं भी गीता का उपदेश करता हूँ, क्या अंतर पड़ता है, है ना। तो अंतर क्या है कि कृष्ण अपना विश्व रूप दिखलाया, आप दिखलाइए, है ना, तब पता चलेगा कि अंतर क्या है। कृष्ण ने अपने को भगवान कहा, आप भी अपने को भगवान कहते हैं, तो कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखलाया, आप भी दिखलाइए अपना विश्व रूप, है ना। और कृष्ण के विश्व रूप में क्या है? संपूर्ण सृष्टि है, और जो चाहो वो देख लो, और भूत भविष्य वर्तमान भी देख सकते हो, हर चीज देख सकते हो, है ना। आप अपने विश्व रूप में दिखलाइए, अगर हम देखना चाहें कि 10 जन्म पहले मैं कौन था, मैं किस शरीर में था, या ये कोई भी किसी के बारे में अगर जानना चाहें कि 10 जन्म पहले ये प्रभु जी किस शरीर में थे, तो क्या दिखा सकते आप? या अमेरिका के जो है, अमेरिका में रहने वाले आपके मित्र हैं, तो अपने घर में हैं या घर के बाहर हैं या घर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या आप दिखा सकते हो? आप नहीं दिखा सकते, है ना। तो अपने को भगवान कहने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा सकते ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे पिछले श्लोक में ना शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। हाँ, ना मतलब वेदों के द्वारा कोई मुझे नहीं जान सकता। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि अपने पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए कि वैदिक ग्रंथों का मुझे बहुत अभ्यास है, मुझे बहुत ज्ञान है, शास्त्रों का मुझे बहुत ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं बनता है तो शास्त्रों का ज्ञान से भी जो है उससे लाभ नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान से अगर आपको भक्ति में सहायता मिलती है तब तो शास्त्रों के ज्ञान का कुछ लाभ है। इन शास्त्रों के ज्ञान से अगर आपको भक्ति में कोई सहायता नहीं मिलती तो फिर क्या लाभ है, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। अगर कृष्ण की भक्ति आप नहीं करते हैं तो भगवत गीता की टीका लिखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप प्रयास मत करिए, अपराधी होगा। आगे प्रभुपाद कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज द्विभुज रूप में परिणत होते हैं। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में लिखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप से ही उद्भूत हैं। कृष्ण के दो भुजाओं का जो रूप है यही आदि रूप है। कृष्ण के दो भुजाओं के रूप से ही चार भुजाओं का रूप प्रकट होता है और चार भुजाओं के रूप से विश्व रूप प्रकट होता है। और क्रम इसी प्रकार है, विश्व रूप से चार भुजाओं का रूप बनता है और चार भुजाओं के रूप से भगवान द्विभुज रूप में आ जाते हैं। ये समस्त उद्भवों के उद्गम हैं। कौन? कृष्ण, दो भुजाओं वाले कृष्ण समस्त उद्भवों के उद्गम हैं। यानी जितने भी रूप हैं कृष्ण के, जितने अवतार हैं, सब द्विभुज रूप से होते हैं। आगे कृष्ण इनसे भी भिन्न है। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं। निर्विशेष रूप अगर कृष्ण से अगर निकलता है तो उसमें कहने की बात ही क्या है। कृष्ण का निर्विशेष रूप है, निराकार रूप ज्योति अगर कृष्ण के शरीर से निकल रही है तो कहने की बात ही नहीं है। उनके कितने भी अवतार हैं वो सब कृष्ण से ही निकलते हैं। फिर ज्योति निकल रही है तो उसमें क्या बात है। आगे जहां तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारण समुद्र में शयन करते हैं और जिनके श्वास प्रश्वास में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते रहते हैं भी भगवान के अंश हैं। चतुर्भुज रूप कई हैं, उनमें से एक चतुर्भुज जो बहुत निकट है वो कौन सा है? महाविष्णु। कारण समुद्र में लेटे हुए हैं महाविष्णु और श्वास से क्या निकलते हैं उनके? असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं श्वास से। जब श्वास अंदर जाती है उनकी तो सब ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो वे भी जो है श्री कृष्ण के कौन है? अंश हैं। ना जैसे कि ब्रह्म संहिता में 5:48 कहा गया है, जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहं भजामि। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं और पुनः बाहर निकल आते हैं ये महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो कृष्ण की लोग कहते ना, नहीं नहीं हम साकार की पूजा नहीं करते, हम तो निराकार को श्रेष्ठ मानते हैं, हम तो आकाश आकाश भगवान की पूजा करते हैं, आकाश भगवान की पूजा करते हैं। कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करते, हम किसकी पूजा करते हैं? आकाश भगवान की पूजा करते हैं निराकार। क्योंकि कृष्ण भगवान तो सीमित हैं आकार में, कृष्ण भगवान तो सीमित है आकार में, और आकाश भगवान भगवान असीमित है, तो आकाश भगवान की पूजा करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ प्रभुपद क्या लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। ये विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवद गीता से पुष्ट होता है। आदि महापुरुष कहाँ पुष्ट हुआ? इसी अध्याय में कि कृष्ण से ही निकले तो पुष्ट हुआ गीता से। आगे गोपाल तापन उपनिषद में एक एक निम्न लिखित कथन आया है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णस्या कृष्णाया कृष्ण कारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे ही परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है कृष्णो वे परमम देवतम, कृष्ण ही परम देवता है। गोपाल तापन प्रसद 1:3 एको वशी सर्वगः कृष्ण इट्या, वे कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। एको भी सन बहुधा योग भाति, कृष्ण एक हैं किंतु वे अनंत रूपों तथा अनंत अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापन 1:21 ब्रह्मसीता 5:1 का कथन है। ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादिर गोविंदाम सर्व कारण कारणम। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण है। आगे अन्यत्र भी कहा गया है यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म है नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उनका नाम कृष्ण है और वे कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब ये कहा गया है कि ये कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है अपितु साक्षात भगवान है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो पहले भागवतम में वर्णन किया गया तो कृष्ण का भी नाम उसी में आ गया अवतारों की सूची में, लेकिन बाद में क्या कहा कि बाकी जितने अवतार हैं अंश और कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। आगे इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं मद्धा परतरम नान्यत, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। मद्धा परतरम नान्यत, परतरम का मतलब अधिक श्रेष्ठ, मुझसे अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ना। अन्यत्र भी कहा गया है अहम आदिर ही देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूं। हम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। दूसरा श्लोक 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। आगे कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करते हैं। परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम परमं भवान। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं, अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वो उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है, हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है, ईश्वर का आदि रूप नहीं है। आगे विश्वरूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। तो बिल्कुल आकर्षक नहीं है विश्वरूप देख करके, है ना। क्यों? प्रभुपाद लिखते हैं कि विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं, तो अगर वे जो है कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं या कोई अपने को कृष्ण का मित्र मानते हैं, अगर इस तरह से उन्होंने संबंध बना लिया है तो इस संबंध में इतना रस है कि विश्व रूप जो है उस रस में बाधा डालेगा। जैसे माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के अंदर ब्रह्मांड देखा है, लेकिन फिर वो भयभीत हो गई माता यशोदा, तो कृष्ण तुरंत उस भुला दिया, उस बात को भुला दिया। क्यों भुला दिया? क्योंकि इस बात से भक्त लोग फिर कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकेंगे, है ना। इसलिए कृष्ण अपने इस रूप को नहीं दिखाते, क्योंकि भक्तों के प्रेम में ये बाधक है। भक्तों में उनसे प्रेम करते हैं अपने पुत्र के रूप में, तो कृष्ण क्या चाहते हैं? उनके पुत्र बनना चाहते हैं, उनको प्रेम चाहिए। और कृष्ण विश्व रूप अपना प्रकट नहीं करते हैं भक्तों के सामने, कभी करते हैं बहुत थोड़े समय के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें उनको प्रेम नहीं मिलता भक्तों के द्वारा। आगे भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को ये विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उन्हें भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, वे भी कोई सामान्य व्यक्ति न थे। इसीलिए वे विश्व रूप से मोहित नहीं हुए। वे रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया। ये तीन पेज का तात्पर्य था, बहुत लंबा तात्पर्य था प्रभुपाद का। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं आपका? इनका प्रश्न है अनन्य भक्ति से क्या तात्पर्य है। इसमें देखिए अनन्य भक्ति जो शब्दार्थ है, इसमें क्या लिखा है? अनन्या सकाम कर्म था ज्ञान से रहित, सकाम कर्म और सकाम ज्ञान से रहित, जिसमें कामना हो। कोई भी कर्म जिसमें कामना होती है, भौतिक कामना होती है, कोई भी ज्ञान जिसमें भौतिक कामना होती है, उससे रहित हो। भौतिक ज्ञान मतलब जो ज्ञान है जिसमें भौतिक कामना हो, मुक्ति की भी कामना भौतिक है, तो मुक्ति भी जो है अगर हम चाहते हैं ज्ञान के द्वारा, अगर हम मुक्ति पाना चाहते हैं, कैसी मुक्ति? कि हम कृष्ण की सेवा से मुक्त हो जाएं, है ना। तो वो जो है भक्ति नहीं कहलाती, वो ज्ञान जो है भक्ति में विरोधी होता है, भक्ति में ये बाधक है। अगर कोई व्यक्ति जो है भक्ति के द्वारा ऐसा ज्ञान बना चाहता है जिससे कि वो मुक्त हो जाएगा, तो ये ज्ञान क्या है? भक्ति में बाधक है। अनन्य भक्ति का मतलब है कि इसमें सकाम कर्म और सकाम ज्ञान ना हो। अनन्य भक्ति का मतलब है हम केवल कृष्ण की सेवा पाना चाहते हैं। अन्य जो ना हो, ऐसी भक्ति कृष्ण की है जिसके साथ किसी अन्य की भक्ति नहीं होना चाहिए, इसको अनन्य भक्ति कहते हैं। अनन्य भक्ति का मतलब है कि हम केवल कृष्ण की भक्ति करें, उसके साथ साथ ये नहीं कि नहीं इनकी भी भक्ति करना है, देश की भक्ति भी करना है, परिवार की भी भक्ति करना है, समाज की भक्ति भी करना है, और मानवता की भक्ति करना है। करते ना लोग, कोई मानवता का भक्त है, कोई समाज का भक्त है, कोई देश का भक्त है, कहते हैं देश भक्ति से बढ़कर कोई धर्म नहीं। अनन्य भक्ति में इस प्रकार की और कोई दूसरी भक्ति नहीं होती है। अनन्य भक्ति में फिर शिव जी की भी भक्ति करना, ब्रह्मा जी की भी भक्ति करना, गणेश जी की भक्ति करना, सूर्यदेव की भी भक्ति करना, ये नहीं होता है अनन्य भक्ति में। अनन्य भक्ति में केवल कृष्ण की भक्ति और किसी की भक्ति नहीं, क्योंकि हमारा संबंध एकमात्र कृष्ण के साथ ही है। हमें अब जो है उसी संबंध को जागृत करना है, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। और अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आप सबसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को केंद्र बना करके। अनन्य भक्ति, ये अन्य देवता भक्ता, कुछ अन्य देवताओं के भक्त होते हैं, यजन्ते श्रद्धान्विता, श्रद्धा पूर्वक पूजन भी करते हैं। ते भी माम एव कौन दे यजन्ते विधि पूर्वकम, तो वे भी मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं, अनन्य भक्ति नहीं है। हम कृष्ण की भी भक्ति करेंगे और दूसरे देवताओं की भी भक्ति करेंगे, नहीं चलेगा। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं साथ साथ दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं, इसका मतलब कि आपने दूसरे देवताओं को भी कृष्ण के समान मान लिया, अपने आप में बहुत बड़ा अज्ञान है। कृष्ण कहते हैं नाभे विदो सुरगणा, देवता लोग भी मुझे नहीं जानते। और आप जो है उन्हीं देवताओं को कृष्ण के समान समझते हैं। कृष्ण कहते कोई भी देवता मुझे नहीं जानता। अनन्य भक्ति का मतलब है कि जब आप कृष्ण के अलावा और किसी की भक्ति नहीं करते, और कोई प्रश्न किसी का, तो मैं प्रश्न करूं? हाँ, अच्छा देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने चार बातें मना की थी, चार बातों के द्वारा उनका दर्शन नहीं हो सकता है, हैं? वो कौन कौन सी चार बातें हैं जिनके द्वारा कोई दर्शन नहीं कर सकता? पहली बात क्या है? वेदों के अध्ययन के द्वारा कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है? तपस्या, तपस्या के द्वारा कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता। तीसरी बात दान, दान के द्वारा कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता। और चौथा पूजा, पूजा के द्वारा भी कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकता, है ना? और फिर भगवान ने आज के श्लोक में कौन सी विधि बताई जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कृष्ण का दर्शन कर सकता है? अनन्य भक्ति के द्वारा, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा दर्शन कर सकता है। और अनन्य भक्ति के अंदर ये चारों कार्य भी किए जा सकते हैं। कौन से चारों कार्य? अनन्य भक्ति के अंदर वेदों का अध्ययन भी कर सकते हैं आप, और तपस्या भी कर सकते हैं, और पूजा भी कर सकते हैं, और दान भी कर सकते हैं। अनन्य भक्ति के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। तो वेदों का अध्ययन करना, है ना, अनन्य भक्ति में वेदों का अध्ययन करना, ये हो सकता है। अगर आप जो है वेदों, वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं भक्ति उसमें निकालने के लिए, उससे भक्ति निकालने के लिए, भक्ति के जो निष्कर्ष है वो निकालने के लिए, तब तो वेदों का अध्ययन सही है। लेकिन कोई व्यक्ति भागवत का भी अध्ययन करता है, उसमें से भक्ति निकाल देता है, अलग कर देता है निकाल के कि मुझे नहीं चाहिए, तो बाकी वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार से तपस्या, भक्ति बिना अगर आप तपस्या करते हैं तो कोई लाभ नहीं है। भक्ति से ही तपस्या करते हैं, तो भक्ति से ही तपस्या करने का क्या मतलब है? प्रभुपाद ने उदाहरण दिया एकादशी का उपवास करना और जन्माष्टमी, इस तरह के जो है जो भी विशेष त्योहार आते हैं, तो ये तपस्या है, भक्ति में तपस्या। फिर भक्ति में दान क्या है? कृष्ण भावनामृत का दान करना, चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े दानी बताए गए हैं। क्यों, क्या करते थे? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्रदायी, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना? तो हम तो कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान कर सकते, नहीं तो अभी बहुत बड़ा दान कर सकते हैं। क्या चीज है वो? कृष्ण का संदेश, कृष्ण का संदेश, है? और कृष्ण के संदेश में कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है, है? और कृष्ण का संदेश शुद्ध रूप में आप कैसे दान कर सकते हैं? पुस्तकों के रूप में, प्रभुपाद की पुस्तकों के रूप में, तो दान हो गया। इसके बाद पूजा, तो भक्ति रहित पूजा से कृष्ण को नहीं देख सकते आप, लेकिन भक्ति के साथ पूजा किया जाए तो फिर कृष्ण का दर्शन किया जा सकता है। उसमें प्रभुपाद ने क्या समझाया है, कैसी पूजा होगी? विधि पूर्वक पूजा करें कृष्ण की। कृष्ण को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है कृष्ण को, तो कृष्ण का दर्शन किया जा सकता है, है ना। तो भगवान ने आज के श्लोक में अनन्य भक्ति के द्वारा कितनी बातें बताई हैं कि जो व्यक्ति कर सकता है, चार, कौन कौन सी? पहली बात, नहीं मेरा प्रश्न क्या है, समझे, मेरा प्रश्न क्या है, अनन्य भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति कितने प्रकार के कार्य कर सकता है आज के श्लोक में भगवान ने बताया है। आज के श्लोक में अनन्य भक्ति के द्वारा कितने प्रकार के कार्य कर सकता है, मतलब जो प्राप्त कर सकता है, एक तो भगवान का, भगवान को जान सकता है, दूसरा दर्शन कर सकता है, और तीसरा प्रवेश कर सकता है, उनके रहस्य को समझना। यहाँ प्रवेश करने का मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि रहस्य को समझना, भगवान के रहस्य को समझना, ये प्रवेश करना है अनन्य भक्ति के द्वारा। अच्छा, ज्ञातुम, हाँ, गीता को समझने का मतलब कृष्ण को समझना, ज्ञातुम, अनन्य भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति कृष्ण को समझ सकता है, हाँ? और कृष्ण को समझने के लिए गीता समझना, गीता को समझना, क्योंकि कृष्ण ने गीता जो सुनाई अपने को समझाने के लिए सुनाई, कृष्ण को समझने के ही लिए ये कृष्ण ने गीता सुनाई है। गीता को पढ़ करके आप कृष्ण को नहीं समझ रहे हैं तो फिर क्या समझे आप, कुछ भी नहीं समझे। गीता जो है कृष्ण के समझने के ही लिए है, गीता को कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर आप गीता के द्वारा कृष्ण को नहीं समझ रहे हैं, कृष्ण की सेवा को नहीं मानते, तो आप क्या समझे, कुछ नहीं। हाँ, ये बता रहे हैं, सवेरे प्रभुपाद का प्रवचन था तो उसमें था कि भागवत को समझने का मतलब है भगवान को समझना, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जो भगवान को समझने के लिए। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है, इसका क्या मतलब है, सच्चिदानंद विग्रह है कृष्ण का शरीर, कौन बताएगा? सच्चित आनंद, तीन चीजें हैं, सत का मतलब सनातन, और चित का मतलब ज्ञान, और आनंद सब प्रकार के रस, तो सच्चित आनंद कृष्ण का जो शरीर है वो सच्चित आनंद है। अब कोई कहता है कि नहीं नहीं, हम तो कृष्ण के रूप को ज्यादा महत्व नहीं मानते, महत्वपूर्ण नहीं मानते, क्योंकि सीमित है रूप, और आकाश को हम ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि वह सीमित है, तो क्या उत्तर है आपका, कौन बताएगा? कोई कहता है कि कृष्ण का रूप तो सीमित है, तो हम कृष्ण को क्यों श्रेष्ठ माने, आकाश को हम श्रेष्ठ मानते हैं, आकाश असीमित है, तो आपका क्या उत्तर है? आकाश जो है, कृष्ण के शरीर में आकाश भी है, संपूर्ण आकाश, माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के अंदर क्या देखा, संपूर्ण आकाश कृष्ण के मुख के अंदर देखा। कृष्ण के अंदर सब कुछ देखा। तो इसलिए कृष्ण का जो है जो शरीर सीमित है, उस सीमित शरीर के अंदर ही असीमित आकाश, हर चीज असीमित कृष्ण के सीमित शरीर के अंदर ही। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निदाई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। Thank you.